आमाल बाप 27। ये तय किया गया हम बजरिया जहाज अतालिया जाएंगे। यूलिस नामी फौजी अफसर जो इंचार्ज था पौलुस की और दूसरे कैदियों की निगरानी करता रहा। यूलिस हुक्मरान फौज में खिदमत अंजाम दे चुका था। एक जहाज जो अदरमतियम से आया था और एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बंदरगाहों को जाने के लिए तैयार था, हम उस जहाज में सवार हो गए। अरस्तरखस भी हमारे साथ था, थिसलिनीके और मगदीनिया से आया था। दूसरे रोज़ हम शहर सैदा में आए। यूलियस पौलुस पर मेहरबान था, उसने पौलुस को दोस्तों को देखने की आज़ादी दी तो दोस्तों ने उसकी खातिर तवाज़े की। हम सैदा से रवाना हुए और जज़ीरा कुप्रुस के करीब पहुँचे। हम कुप्रुस के जनूबी सिमत से बढ़े क्योंकि हवा मुखालिफ थी। हम कलिकिया और पंफीलिया से होकर समंदर के पार गए और लोकिया के शहर मोरा में उतरे। मोरा में फौजी अफसर ने एक जहाज़ पाया जो इस्कंदरिया से अतालिया जाने वाला था। उसने हमें उस जहाज़ में सवार कर दिया। हम आहिस्ता आहिस्ता उस जहाज़ से कई दिन तक सफ़र करते रहे क्योंकि हवा मुखालिफ थी। मुश्किल से कंदुस पहुँचे चूँकि मज़ीद आगे ना बढ़ सके थे। हम जनूबी साहिल से होते हुए सलमोनी के करीब जज़ीरा कुरैत पहुँचे और बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हुसैन बंदरगाह नामी एक मुकाम पर पहुँचे जहाँ से लसाइया शहर नज़दीक था। लेकिन हमने बहुत सा वक्त ज़ाया किया और उस वक्त जहाज़ से चलना ख़तरे से खाली न था क्योंकि यहूदियों के रोज़े का दिन गुजर चुका था। इसलिए पौलुस ने उन्हें इंतबाह दिया,
आए लोगों, मुझे मालूम होता है कि इस सफ़र में हमें तकलीफ और नुकसान है, न सिर्फ जहाज़ का और सामान का बल्कि हमारी ज़िंदगियों का भी नुकसान होगा।
मगर जहाज़ के कप्तान और मालिक जहाज़ ने पौलुस की बातों से इत्तेफाक नहीं किया और फौजी सरदार ने भी पौलुस की बातों की बनस्बत कप्तान और मालिक जहाज़ की बात पर तवज्जो दी। और चूँकि वो बंदरगाह जाड़ों के मौसम में जहाज के ठहरने के लिए महफूज जगह न थी, इसीलिए लोगों की अक्सरियत ने तय किया कि जहाज़ को छोड़ दिया जाए और फिलिकिस में पहुंचकर जाड़ा वहीं गुजार दें। फिलिकिस एक शहर था जो जज़ीरा कुरैते पर वाक़ थे। वहां पर बंदरगाह थी जिसका रुख जनूब मशरक और शुमाल मशरक में था। जब जनूबी हवा चलनी शुरू हुई तो जहाज़ के लोगों ने ख्याल किया जो हम चाहते हैं वैसा ही हुआ और ये हमें मिल गई। जहाज़ का लंगर उठाया और जज़ीरा कुरैते के किनारे किनारे चलने लगे। लेकिन थोड़ी देर में तूफ़ानी हवा जो यूरकलों कहलाती है उस पार से आई। जब जहाज़ तेज़ हवा की जद में आया तो जहाज़ हिचकोले खाने लगा और हवा के बरखिलाफ़ आगे बढ़ नहीं पा रहा था और लाख कोशिश के बावजूद उसे काबू नहीं किया जा सका। आखिरकार लाचार होकर जहाज़ को हवा और मौजों पर बहने के लिए छोड़ दिया। हम बहते बहते कोदा नामी एक छोटे जज़ीरा की तरफ पहुँचे और बड़ी जद्दोजहद के बाद डूंगी बचाव कश्ती को काबू में लाए। डूंगी जहाज़ पर लाने के बाद उसे जहाज़ के साथ रस्सियों से मजबूती से बांधा। उन्हें डर था कि कहीं सूरतस की रेत में जहाज़ धंस न जाए और इस डर से जहाज़ का साजो सामान उतारना शुरू किया और जहाज़ को हवा पर छोड़ दिया। दूसरे दिन तूफ़ानी हवा शदीद थी, उन्होंने कुछ चीज़ों को जहाज़ के बाहर फेंकना शुरू किया। तीसरे दिन अपने ही हाथों जहाज़ के आलात और असबाब भी फेंकने लगे। कई दिनों तक सूरज तारे दिखाई नहीं दिए क्योंकि शदीद आंधी चल रही थी। बचने की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं। लोगों ने कई रोज़ से कुछ नहीं खाया। तब पौलुस उनके सामने एक दिन खड़ा हो गया और कहा,
मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैंने तुमसे कहा था करीते से मत निकलो, तुमने मेरा कहा ना माना। अगर मानते तो ये तकलीफ़ और नुकसान ना उठाते, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ कि खुश हो जाओ क्योंकि तुम में से कोई नहीं मरेगा, सिर्फ जहाज़ का नुकसान होगा। गुज़िश्ता रात को खुदा की जानिब से एक फरिश्ता मेरे पास आया, वो खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूँ, मैं उसका हूँ। खुदा के फरिश्ते ने कहा, अए पौलुस, ڈرو مت، تمہیں قیصر کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ تمام لوگوں کو جو تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں بچا لیے جائیں گے۔ تو اے لوگوں، خوش ہو جاؤ، میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر چیز اسی طرح پوری ہوگی جیسا کہ اس کے فرشتے نے مجھ سے کہا، لیکن ہمیں جزیرہ پر حادثے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
چودہویں رات جب ہمارا جہاز بحر ادریا کے اعتراف چل رہا تھا تو ملاحوں نے سمجھا کہ ہم کسی زمین سے قریب ہیں۔ انہوں نے پانی میں رسہ پھینکا جس کے سرے پر وزن تھا، اس سے انہوں نے معلوم کیا کہ پانی 120 فٹ گہرا ہے۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھے اور دوبارہ رسہ پھینکا تو معلوم ہوا کہ پانی 90 فٹ گہرا ہے۔ ملاحوں کو ڈر تھا کہ کہیں جہاز چٹانوں سے نہ ٹکرا جائے، اس لیے جہاز کے پیچھے سے پانی میں 4 لنگر ڈال دیے اور صبح ہونے کی دعا شروع کر دی۔ کچھ ملاح جہاز کو چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے تھے، انہوں نے بچاؤ کشتیوں کو نیچے کرنا شروع کیا تاکہ وہ جہاز کے سامنے سے لنگر ڈالنا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن پولوس نے فوجی سردار اور سپاہیوں سے کہا،
اگر یہ لوگ جہاز میں نہ ٹھہرے تو تمہاری زندگیاں نہیں بچائی جا سکتی۔
اسی لیے سپاہیوں نے رسیوں کو کاٹ دیا اور بچاؤ کشتیاں پانی میں گر پڑیں۔ مختصر دن نکلنے سے پہلے پولوس نے ہر ایک کو تھوڑا کچھ کھا لینے کے لیے کہا،
تم لوگ گزشتہ 14 دن سے انتظار کرتے رہے ہو اور تم فاقہ کر رہے ہو، کچھ نہیں کھایا۔ میں تم سے تقاضا کرتا ہوں، کچھ تو کھا لو، یہ تمہارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور تم میں سے کسی کا ایک بال بانکا بھی نہ ہوگا۔
اتنا کہنے کے بعد پولس نے تھوڑی روٹی لی اور سب کے سامنے خدا کا شکر ادا کیا۔ تب وہ روٹی توڑ کر کھانا شروع کیا، تب سب لوگوں کی ہمت بندھی اور وہ بھی کھانا شروع کیے۔ کل ملا کر جہاز پر 276 آدمی تھے۔ جب سیر ہو کر کھا چکے تب انہوں نے طے کیا کہ جہاز کے وزن کو کم کیا جائے اور غلہ کو پانی میں پھینکنا شروع کیا۔ جب صبح ہوئی تو ملاحوں نے زمین کو دیکھا لیکن وہ پہچان نہ سکے، لیکن ایک کھاڑی جس کا کنارہ صاف تھا نظر آیا، اور ملاح اس ساحل پر ممکن ہوا تو جہاز کو لنگر انداز کرنا چاہا۔ انہوں نے لنگر کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور لنگر کو سمندر میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی پتوار کی رسیوں کو بھی کھول دیا اور جہاز کو ہوا کے رخ پر چھوڑ دیا۔ لیکن جہاز ریت سے ٹکرا گیا اور جہاز کا اگلا حصہ پھنس گیا اور جہاز آگے نہ بڑھ سکا، اور بڑی بڑی موجوں نے جہاز کے پچھلے حصے کو متاثر کیا اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا۔ سپاہیوں نے طے کیا کہ قیدیوں کو مار ڈالیں تاکہ کوئی قیدی تیر کر بھاگ نہ جائے، لیکن فوجی سردار پولس کی زندگی بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سپاہیوں کو ان کے منصوبے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی اور لوگوں سے کہا کہ جو تیر سکتے ہیں وہ کود کر کنارے پر پہنچ جائیں۔ دوسروں نے جہاز کے ٹکڑے اور تختوں کا سہارا لے لیا، اور اس طرح تمام آدمی کنارے پر پہنچ گئے اور ان میں سے کوئی بھی نہ مرا۔